शांति। सकारात्मक चिंतन इस विषय पर संबोधन करने हेतु हमारे मध्य आदरणीय मोहन भाई जी आए हैं। आप सभी महान आत्माओं से हमारा नम्र निवेदन है, एक हाथ के ताली से आप मोहन भाई जी का भी स्वागत करेंगे। कहा जाता है, सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती। सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है, सकारात्मक चिंतन के बिना, सकारात्मक चिंतन के बिना जीवन तनाव मुक्त नहीं बनती। सकारात्मक चिंतन के बिना जीवन तनाव मुक्त नहीं बनती। और बादल के बिना बरसात नहीं होती, बादल के बिना बरसात नहीं होती। तो अभी हम सुनेंगे सकारात्मक चिंतन इस विषय पर आदरणीय मोहन भाई जी से।
ओम शांति। थोड़ा और दिल और दिमाग को मिला करके हम लोग फिर से ओम शांति बोलेंगे, क्योंकि ओम शांति का आज के इस टॉपिक से बहुत गहरा संबंध है। ओम शांति। चार मित्र थे। एक कहानी है, बचपन में पढ़ी है। चार दोस्त थे, एक गांव में रहते थे और उस गांव में बहुत ज्यादा नौकरी आदि के साधन नहीं थे, इसीलिए वो चार गांव में एक जगह बैठकर बात कर रहे थे कि भाई यहाँ तो इतने नौकरी आदि के साधन नहीं है, कहीं बाहर चल के कोई हुनर प्राप्त किया जाए, कोई शिक्षा प्राप्त की जाए जिससे अपनी आजीविका को हम अच्छी तरह निर्वाह कर सकें। तो उन लोगों ने निश्चय किया और कि हम अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और फिर आज से ठीक एक साल बाद हम इसी स्थान पर और इस समय मिलेंगे। चारों अलग अलग जगह चले गए। एक साल बीत गया। उसके बाद जैसा उन लोगों ने निश्चय किया था, एक वर्ष के बाद वो एक ही स्थान उसी स्थान पर मिले। बहुत खुश थे चारों, क्योंकि एक साल बाद चार पुराने मित्र मिल रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। बात करते करते वो गांव में जा रहे थे, उन्होंने देखा रास्ते में कुछ हड्डियां पड़ी हैं, ऐसे किसी जानवर की कुछ हड्डियां पड़ी थी। तो एक मित्र को ख्याल आया, उसने कहा, अरे मैंने एक साल के अंदर ऐसी शिक्षा प्राप्त की है, ऐसा हुनर प्राप्त किया है कि मैं इन हड्डियों को जोड़ सकता हूँ और किस जानवर की ये हड्डियाँ हैं मैं इन्हें जोड़ देता हूँ जिससे जानवर का रूप बन जाएगा, जिस जानवर का रूप है। उसने कुछ मंत्र विद्या आदि पढ़ी और धीरे धीरे वो हड्डियाँ जुड़ गई, एक पशु का ढांचा तैयार हो गया, ढांचा जैसा था। दूसरे ने कहा कि मैंने ऐसी शिक्षा प्राप्त की है कि मैं इसके अंदर मांस और खून आदि इसके अंदर डाल सकता हूं। उसने फिर और कुछ मंत्र विद्या आदि पढ़ी और उसके अंदर बस पूरा मांस और खाल और खून आदि का संचार हुआ, लेकिन वो निर्जीव था, वो शकल एक शेर जैसी हो गई, यानी कि वो शेर का ढांचा था और शेर का रूप आ गया। तीसरे ने कहा कि मैंने ऐसी शिक्षा प्राप्त की है कि मैं इसमें प्राणों का संचार कर सकता हूं, तो वो भी अपने हुनर दिखाने को बड़ा लालायित था कि इन दो ने तो अपना शक्ति दिखा दी, मैं भी दिखाऊं। तो इसलिए उसने शुरू किया, तो चौथे इतनी देर में ही चौथे ने बोला, अरे अरे भाई तुम क्या करने जा रहे हो, सोचा है तुमने कि इससे क्या होगा? तो वो तो अपने नशे में था, उसने कहा हाँ हाँ इन दो ने तो अपनी विद्या दिखा दी है, मैं भी अपना गुण और शक्ति इसमें दिखाना चाहता हूँ जिससे ये शरीर जीवित हो जाए, इसमें संचार हो जाए प्राणों का। तो उसने कहा वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो तुमने सोचा है, अगर ये शेर जीवित हो गया? बस उसने कहा इससे मेरी विद्या सिद्ध हो जाएगी कि मैंने उस विद्या को प्राप्त किया है। उसने कहा वो तो ठीक है, लेकिन हम सबके प्राण खतरे में पड़ सकते हैं। लेकिन वो तो अपने नशे में था, उसने कहा नहीं, इन दो ने अपनी विद्या दिखा दी, मैं अपनी विद्या दिखाता हूं। और वो मंत्र आदि पढ़ने लगा। तो चौथे ने कहा कि भाई ठीक है तुम पढ़ो, जरा मुझे यहां से जाने दो। वो थोड़ा दूर गया और एक पेड़ पर चढ़ गया और देखने लगा उधर। तीसरे ने भी अपना मंत्र विद्या आदि चालू रखा, क्या हुआ होगा उसके बाद? मंत्र विद्या वगैरह पढ़ी, उसने भी शिक्षा तो हासिल की थी। वो शेर एकदम जीवंत हो उठा और फिर क्या किया होगा उसने? जो तीन मित्र वहां थे बस उन पर हमला कर दिया। अब इससे हमें कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हम सारा हमारा सोचने के ऊपर निर्भर है। जो भी है अगर वो सोचते समय ही ये समझ लेता कि ये शेर जीवित हो जाएगा और जैसा चौथे ने बोला था हम सब पर वार कर सकता है, तो ऐसा ना होता। उस समय तो उसने सोचा नहीं, अपने नशे में था विद्या के, तो उन तीनों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। और जो चौथा था वो तो पेड़ पर चढ़कर देखता रहा। तो विद्या या गुण शक्ति हासिल करना अच्छा है, लेकिन कहां पर क्या शक्ति को यूज करना है उसके लिए बहुत आवश्यकता है अपने बुद्धि की। और आज के विषय में भी ये है, सकारात्मक सोचने की कला। क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही वाणी में आएगा, वैसा ही फिर व्यवहार में आएगा, वैसा ही हम कर्म करेंगे वैसा ही संस्कार बनेगा। इसीलिए अगर हमारा सोचना सकारात्मक हो जाता है तो ये जीवन के लिए एक बहुत बहुत आवश्यक है। इसीलिए आज विषय रखा गया है सकारात्मक चिंतन की कला। आज सुबह तो आप सबने शिविर किया ना, सुबह जो 6:30 से था शिविर 8 तक, किस विषय के ऊपर शिविर था? आप लोग सब कौन हो? आत्मा। तो वो और आत्मा में और क्या जो है संस्कार होते हैं, क्या गुण होते हैं, शक्तियां होती हैं, वो सारी बात बताई गई होंगी आज। तो आत्मा की जो एक फैकल्टी है, आत्मा जो है वो राजा है। आप देख रहे हो सोल द एम्परर, आत्मा इस शरीर की राजा है। और आत्मा जैसे कोई राजा होता है या प्रधानमंत्री होता है, कई सारे मिनिस्टर होते हैं काम करने के लिए, तो इसी तरह आत्मा राजा के पास भी तीन मुख्य कार्यकर्ता हैं, मिनिस्टर हैं, जिनके द्वारा आत्मा कार्य करती है। वो क्या है मुख्य? आत्मा की एक फैकल्टी है मन। आज सुना होगा ना आपने, आत्मा के तीन अंग कौन कौन से हैं? मन बुद्धि संस्कार। वेरी गुड, आप सब तो एक लेक्चर के बाद एक्सपर्ट हो गए, बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो मन, मन जितना आज्ञाकारी होगा हमारा, उतना आत्मा राजा ठीक काम कर सकेगी। और मन ही अगर आज्ञाकारी नहीं हुआ, इधर उधर भागता रहा, जैसा कह देते हैं क्या करें, मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, तो फिर आत्मा राजा के वो कंट्रोल में ही नहीं रहेगा और फिर तो परेशानी होगी, स्ट्रेस होगा, तनाव होगा, टेंशन होगा। तो इसीलिए आत्मा का कि एक अंग है मन। दूसरा आत्मा का एक अंग है कौन सा? बुद्धि, सरेंडर्ड इंटेलेक्ट। बुद्धि भी एकदम आत्मा राजा के प्रति वफादार होनी चाहिए, डेडिकेटेड होनी चाहिए। और आत्मा राजा जो मन को और बुद्धि को, अपने कार्यकर्ताओं को जो भी ऑर्डर दे, वो उसे मानना चाहिए, सरेंडर्ड होना चाहिए बुद्धि को। तो मन, बुद्धि और तीसरा क्या है? संस्कार। वाह, तो मन को अगर कहें, मन है मंत्री, आत्मा राजा का मन है मंत्री, बुद्धि है सेनापति और संस्कार है सैनिक। बहुत सारे सैनिक होते हैं, अनेक संस्कार होते हैं, उनके ऊपर सेनापति होता है। तो बुद्धि है सेनापति, वो सब संस्कारों को कंट्रोल में रखते हैं। तो ये मन, बुद्धि, संस्कार, ये आत्मा राजा के तीन मुख्य कार्यकर्ता हैं। तो इसीलिए आत्मा राजा, आप सब समझो, हम सब राजा हैं, शहंशाह हैं। यहां पर आपको क्यों बुलाया गया है? आत्मा राजा की स्थिति में स्थित करने के लिए। हम सब लोगों ने बहुत भक्ति की भगवान को प्राप्त करने की। अभी भी अगला लेक्चर जो होगा परमात्मा के ऊपर आप सबका होगा, जैसे आज सुबह का आत्मा के ऊपर हुआ। तो इसीलिए हम सब आत्मा राजा किस प्रकार से इन मन, बुद्धि, संस्कार के द्वारा कार्य करते हैं, ये अपने को चेक करते चलना है। और इसके साथ साथ क्या करना है? इन तीनों में जितनी शक्ति होगी, राजा की शक्ति भी उस पर निर्भर करती है जो उसके कार्यकर्ताओं की शक्ति होती है। मन, बुद्धि, संस्कार की क्या शक्ति है वो हम देखें, तो उसके आधार पर मैं आत्मा राजा के पास क्या शक्तियां हैं वो हम अनुभव कर सकते हैं। इधर इसमें दिखाया गया है एक व्यक्ति का चित्र, आधा काला आधा सफेद, तो वो उसमें बताया गया है। इसमें तीनों चीजें बताई गई हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। तो यहां आने से पहले हम सब का मन कैसा था? मन एक सागर में लहरों के समान है, पानी होता है, लहरें, बहुत विचार करता है मन, बार बार संकल्प आते रहते हैं। कितने संकल्प आते हैं मन में? बहुत, अनेक। मुख्य मोटी रीति से सोचा जाए तो हर 2 सेकंड में एक संकल्प आता है, इतनी तेजी से संकल्प बदलते रहते हैं। 2 सेकंड में एक संकल्प आया, 1 मिनट में कितने संकल्प हो गए? करीब 30 संकल्प हो गए। और सारे दिन में बहुत संकल्प चलते हैं। तो ये लहरें बताई गई हैं, मन रूपी सागर के अंदर इतनी लहरें पैदा होती हैं। और यहां पर आप आए हो राजयोग शिविर करने, तो इस शिविर के अंदर, योग के अंदर, जब ये 3 दिन के अंदर वो सीख जाएंगे आप, तो फिर मन की कैसी स्थिति होगी? बिल्कुल विचार के लहरें आएंगी, लेकिन बहुत स्मूथ आएंगी। दोनों लहरों में क्या फर्क है? पहले जो लहरें थी बहुत जो है अनेक अनेक अन डायरेक्शन में जाती हैं, कोना दिख रहा है ना लहरों के अंदर, और कहीं पर भी कोना होता है ना वो छुपता है। आप जा रहे हैं, मेज है कोने वाली या कोई भी कोने की चीज है, अलमारी है, उससे छू गए तो छिल जाएगा, कोना है शार्प होता है छिल जाएगा। तो ऐसी मन के अंदर भी बहुत विचार आते थे, दुख देने के, दुख लेने के, क्रोध के, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, निगेटिव नकारात्मक विचार, वो कोने के समान है। और यहां आप तीन दिन में योग जब सीखेंगे और उसका अभ्यास आप कर लेंगे तो वो विचार बहुत सुखकारी हो जाएंगे, वो कोने की तरह वो चुभेंगे नहीं। इसीलिए ये जो दूसरा बताया गया है वो मन इस प्रकार से सुखकारी विचार करने के में समर्थ होता जाएगा। दूसरी चीज है बुद्धि। बुद्धि की तुलना किससे की गई है? मन की तुलना तो लहरों से कर दी, बुद्धि की तुलना, बुद्धि का क्या काम है? आज सुबह आपको बताया गया होगा ना, बुद्धि का क्या काम है? हाँ, निर्णय करना, यानी कि ये तराजू का काम होता है। जैसे तराजू में ना तोलते हैं तो पता चलता है, इसी तरह मन संकल्प करता है, विचार करता है, बहुत विचार करेगा। आप भी यहाँ पर आए हो ना, तो दो चार छह महीने पहले आपको बताया गया होगा भाई कि आबू में ऐसा राजयोग शिविर है, चलना है, तो मन में बहुत विचार आए होंगे, हाँ भाई चले। हो सकता है किसी को घर में काम हो, दुकान में, नौकरी में, भाई जाऊं न जाऊं, कोई काफी संकल्प आए होंगे। फिर बुद्धि निर्णय करती है, और आप सब जो यहाँ बैठे हो, आप सबकी बुद्धि ने निर्णय किया हमें चलना चाहिए, तो बुद्धि का निर्णय शक्ति के अनुसार चलने का आपने प्लान बनाया, टिकट लिया और यहाँ पर आ गए। तो ऐसे ही मन में कई बार होता है, करूं न करूं, ऐसा करूं ऐसा करूं, बस कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, व्यक्ति निर्णय नहीं कर पाता। तो राजयोग के द्वारा बुद्धि को इतना बल मिलेगा कि निर्णय करने की यथार्थ शक्ति आ जाएगी, सही समय पर हम सही निर्णय करते रहेंगे। तो मन का काम है विचार करना और बुद्धि का काम निर्णय देना, और उसके बाद फिर आप यहाँ पर आए, आपने कर्म किया, रिजर्वेशन कराया और यहाँ पर आ गए। संस्कार, यानी संस्कार की तुलना किससे की गई है? एक रिकॉर्ड से। हाँ, पहले जमाने में ग्रामाफोन होता था और रिकॉर्ड होता था, रिकॉर्ड ग्रामाफोन की प्लेट पर रखते थे, वो प्लेट घूमती थी और ऊपर सुई साउंड बॉक्स रखते थे, तो जो भी रिकॉर्ड में होता था वो आवाज आती थी, सुनने को मिलता था। आजकल तो बहुत सीडी वगैरह और बहुत चीजें आगे निकल गई हैं, तो ये ग्रामाफोन या रिकॉर्ड पुराने जमाने का, जिसने देखा है हाथ खड़ा करें जरा। ओहो, काफी आधे से ज्यादा ने देखा होगा, पुरानी चीज है। तो आत्मा में भी संस्कार जो है ना, वो रिकॉर्ड की तरह ये देख रहे हैं, लेकिन कई बार यही संस्कार, यही रिकॉर्ड परेशान कर देता है पुराने, क्योंकि आपने देखा होगा पहले रिकॉर्ड जब पुराना हो जाता था तो कई बार सुई फंस जाती थी, अटक जाती थी, तो बार 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 वही आवाज आती थी, और वो तो अच्छा नहीं लगता, उससे झुंझलाहट होती है। तो कई बार संस्कार भी हमें पुरानी बातों में बार 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 वही बात को परेशान करते। हम चाहते नहीं कोई पुरानी बात को याद करें, लेकिन कई बार वही बातें बार 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 आके परेशान करती हैं। तो यहाँ पर आपको योग के द्वारा वो शक्ति प्राप्त होगी कि ये संस्कार बहुत स्मूथ हो जाएंगे, आप जब चाहो उस बात को रोक सको, जब चाहो उस अपने संकल्प चला सको। ये मुख्य रीति से आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इस कारण से ये मन, बुद्धि, संस्कार जो लेफ्ट साइड में दिखाए गए हैं, वो अभी तक वर्तमान समय है, और योग के अभ्यास के द्वारा यहाँ आप ज्ञान योग शिविर करने आए हो, इसके बाद आपके मन बुद्धि संस्कार की ऐसी स्थिति हो जाएगी बहुत स्मूथ कि बस वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा, बुद्धि आपके कंट्रोल में आ जाएगी और पुराने जो संस्कार आदि है वो भी सब आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। तो इस कारण से ये राजयोग के द्वारा कैसे आए, इसी पर ही आज अभी हम लोग और चर्चा करेंगे कि मन ये चिंतन करने का, मन फैकल्टी है सोचने की, मन का काम है सोचना। अगर सोचना कंट्रोल हो गया तो बस सब चीज धीरे धीरे कंट्रोल होती जाएगी, और जब इतना ये कंट्रोल में आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, जीवन में खुद ही तनाव से धीरे धीरे मुक्ति होने लगेगी। तनाव स्ट्रेस वो हम सबके कंट्रोल में आता जाएगा। क्यों? क्योंकि आज का संसार जो है ना उसमें हर तरीके से समस्याएं समस्याएं हैं। मनुष्य जो है ना अपने बनाए हुए जाले में खुद ही फंस गया है। ये मकड़ी का जाला है ना, दिख रहा है, तो ये इसके अंदर फंस गया है। और क्यों? क्योंकि मनुष्य की अनेक इच्छाएं हैं और उन इच्छाओं के कारण मनुष्य ऐसा हो गया है। और किसके वश में, देखो ये आज का मनुष्य है और अपने ही बनाए हुए जाले में फंस गया है। कौन सा जाला ये बनाया है, रचा किसने है? वैसे मनुष्य के अंदर बहुत कई प्रकार के कमी कमजोरी विकार होते हैं, लेकिन इन सब को भी अगर करें तो पांच मुख्य विकार हैं। इसलिए ये कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मुख्य विकार इनके वशीभूत आज का मनुष्य हो गया है। और इसके कारण ही अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। कहा भी जाता है संसार में अनेक प्रकार के समस्याएं हैं, उनको तीन भागों में बांट सकते हैं। कौन से तीन भाग? आधि, व्याधि और उपाधि। यानी कि शरीर की समस्याएं हैं, बीमारी आदि है, वो उन एक कैटेगरी वो हो गई। दूसरी और हमारे संबंधी मित्र आदि रिश्तेदार उनकी तरफ से आने वाली समस्याएं, कोई भी समस्याएं आती है, फाइनेंशियल धन की तरफ से कोई समस्याएं आती हैं, कोई किसी भी प्रकार की समस्याएं सांसारिक, आदि व्याधि उपाधि। और इनका उपाय क्या है? सबका उपाय है, क्योंकि सारी चीज हमारे सोचने पर निर्भर करती है। अंग्रेजी में भी आत्मा को कहते हैं क्या कहते हैं? सोल, SOUL। यानी कि आत्मा में गुण तो आपने कई सुने होंगे, सात गुण बताए होंगे ना आत्मा के। कौन कौन से सात गुण बताए थे आत्मा के आज? सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान और शक्ति, ये सब आत्मा के गुण हैं। लेकिन इन सब गुणों में भी जो मुख्य एक गुण है, जो SOUL, सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव, SOUL, आत्मा जो है प्रेम स्वरूप है। और ये प्रेम स्वरूप इसीलिए कहा गया है, बहुत प्रेम की शक्ति बहुत अथा है। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ये प्रेम यानी आत्मा का प्रेम की बात, और ये ही प्रेम जब इसका रूप बिगड़ जाता है तो ये ही विकार हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब जो है इन प्रेम का परवर्टेड फॉर्म है, बिगड़े हुए रूप है। और वही बताया जा रहा था आपको कि जो समस्याएं होती हैं, आदि, व्याधि और उपाधि, कोई भी संसार की समस्या हो उसे इन तीन में बांट सकते हैं। और इसका उपाय क्या है समस्या के ऊपर, इसका समाधान आदि व्याधि उपाधि इसका समाधान है समाधि। समाधि माने मन को समाधिस्थ कर लेना। कोई समाधि का मतलब ये नहीं सब छोड़ छाड़ के हिमालय पर चले जाएं, जंगलों में चले जाएं, नहीं, रहें यहीं, लेकिन मन को हम अंदर की तरफ ले जाएं, समाधिस्थ मन को करें। और जितना जितना मन को समाधिस्थ करते जाएंगे उतना उतना समस्या के समाधान की युक्ति हमारे अंदर आती जाएगी और हम जीवन में सफल होते जाएंगे। और वो कैसे मन को अंदर जाएं और मन को समाधान समाधि की तरफ लेते चलें, वो ही है पॉजिटिव थिंकिंग, यानी सकारात्मक चिंतन। और जितना जितना हमारा सकारात्मक चिंतन जीवन में होता जाएगा उतना उतना हम अंदर की यात्रा बहुत अच्छी तरीके से कर सकेंगे। और हमारा चिंतन ही सकारात्मक नहीं होगा, जब चिंतन सकारात्मक होगा तो बोल भी सकारात्मक होंगे, कर्म भी सकारात्मक होंगे, व्यवहार भी ऐसा ही सकारात्मक होगा, और इस कारण से जीवन में सदा सफलता होती चली जाएगी। तो इसीलिए ये मन के अंदर जो विचार आते हैं उन विचारों को एकाग्र करने का नाम, उन विचारों को अपने वश में करने का नाम, वो ही सकारात्मक चिंतन की कला है। और उसके लिए क्या करना है, जैसे मोबाइल आप सब यूज करते हैं, जब कभी डिस्चार्ज हो जाता है तो क्या करते हैं उसे चार्ज करने के लिए, बिजली में प्लग लगा देते हैं मोबाइल का चार्जर और धीरे धीरे मोबाइल चार्ज हो जाता है। ऐसे ये आत्मा रूपी बैटरी भी विकारों के कारण डिस्चार्ज हो गई है, जो अनेक विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, घृणा, सब निगेटिविटी है। इनके कारण आत्मा की शक्ति कम होती चली जा रही है, और इसलिए इसको चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेन पावर हाउस जो परमात्मा है उसके साथ अपनी बुद्धि वो लगानी पड़ेगी, चार्जर लगाना पड़ेगा मन, मेन जो पावर हाउस। आज यहाँ बैठे हैं, यहाँ बिजली भी है, पंखा भी चल रहा है, स्पीकर भी चल रहा है, क्यों, क्योंकि मेन पावर हाउस से इसका कनेक्शन है, वहां से बिजली आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी, और उससे सारे ये इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं। ऐसे ही जब हम अपनी बुद्धि को परमात्मा जो मेन शक्ति का सागर है उसके साथ जब कनेक्ट कर देते हैं, उसी का ही नाम राजयोग है, उससे क्या होगा कि हमारे अंदर के जो हम मकड़ी के जाले में फंसे हुए थे संसार में, वो जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि, वो सब से हम मुक्ति पा लेते हैं, और मनुष्य जीवन में अथा सुख का, शांति का, पवित्रता का, इन सब का अनुभव करता है। तो यहाँ आप आए हैं तो ये राजयोग जो आपको सिखाया जाएगा अभी नेक्स्ट लेक्चर, परमात्मा फिर राजयोग की विधि, और इस तरीके से ये लेक्चर चलते रहेंगे तो उसमें आपको ये विशेष बात बताई जाएंगी। तो इस रीति से अपना मुख्य, क्यों हमें हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है मन के अंदर, क्योंकि हम जीवन में ये जीवन है हमारा, ये चार शब्द का ये बताया गया लाइफ, LIFE, तो जीवन के अनेक पहलू हैं, जो जैसा था उसने उस रीति से जीवन की व्याख्या करी है। कोई आशावादी था उसने बड़े आशावादी रूप से, जीवन एक बगीचा है, इसकी सुगंध लेते चलो आदि आदि, और निराशावादी होता था उसने निराशावादी रूप में करी। लेकिन जीवन के ये जो दो मुख्य पहलू हैं, एक है जीवन का आंतरिक पक्ष, एक है जीवन का बाह्य पक्ष। तो देखो LIFE चार लेटर है ना, तो LI ये जीवन का एक पक्ष दर्शाता है, लुक इंटरनली। एक है जीवन का आंतरिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, और दूसरा है जीवन का बाह्य पक्ष, एफई यानी फॉरवर्ड एक्सटर्नली। हम सब जीवन में उन्नति चाहते हैं, तरीका तरक्की चाहते हैं, आज जो धन है वो हमारा और धन बढ़ जाए, डबल ट्रिपल हो जाए, एक मकान है हम चाहते हैं दो तीन मकान हो जाए, एक कार है और आगे बढ़ जाए, हर एक चाहता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसमें कई बार स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कई परिस्थितियां आती हैं, तो उसके लिए जीवन का आंतरिक पक्ष मजबूत होना जरूरी है, अंदर का पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष। और जितना हमारा आध्यात्मिक पक्ष मजबूत होगा तो ये समस्याएं आएंगी, तो कोई इन समस्याएं से हम घबराएंगे नहीं, सफलतापूर्वक उन समस्याओं को पार कर लेंगे। इसीलिए अभी ये देखना है कि दोनों पक्ष हमारे ठीक हैं, तो एक पक्ष जो है बाह्य पक्ष वो तो हमारा ठीक है, जिंदगी भर सुबह से उठ के रात तक हम नौकरी धंधा बच्चों का काम घर गृहस्थी का सब करते हैं, लेकिन आंतरिक पक्ष जो है जो एकाग्रता का है, जो योग का है, ध्यान लगाने का, उसमें अगर लगाने भी बैठते हैं ध्यान तो ध्यान लगता नहीं है, मन बार बार बाहर भाग जाता है। तो इसीलिए इन दोनों का बैलेंस होना एक वो बहुत जरूरी है जीवन के अंदर। क्यों? क्योंकि मन जो है ना ये संसार की बहुत बहुत बड़ी शक्ति है। इसीलिए मन के लिए क्या कहा है, बड़े बड़े हमारे पुराने ऋषि मुनि कह के गए हैं, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। वो पक्ष मन चंगा तो कठौत में गंगा, ये भी एक बोला गया है। इस रीति से मन जो है वो हमें अपना देखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि मन कभी भी हम मन से हारे नहीं, बहुत समस्या आएंगी लेकिन मन हमारा उसमें बड़ा ही ऐसा शांत रहे, निर्मल रहे, सही समय पर सही निर्णय हो सके। तो मन को कैसे ऐसा करें, अक्सर करके क्या होता है जीवन के अंदर संबंधों में कोई तनाव आ जाता है, कटुता आ जाती है, क्यों होती है, उससे भी आज हमने देखा है बहुत बड़े बड़े घराने हैं, लखपति करोड़पति घराने भी हैं, लेकिन दो भाई आपस में मिलके नहीं रह सकते, माता पिता को साथ नहीं रख सकते आदि आदि। क्यों? क्योंकि जीवन जो है ना हम बचपन से ब्लेम करते आते हैं किसी को, हम कोई भी बात होती है गलत हो गई हम दूसरे पर, इसने ऐसा करा तो मुझे क्रोध आ गया, इसने अगर ये नहीं किया होता तो ये गलत काम ना होता, ऐसा रिजल्ट होता, तो हम हमेशा उंगली दूसरों पर उठाते हैं लेकिन हम अपने अंदर की तरफ नहीं देखते। वास्तव में आवश्यकता है संबंध के अंदर हम दूसरे को ब्लेम ना करें, अपने को भी देखें। बड़ा अच्छा कहा है किसी ने कि जिंदगी भर गालिब एक ही भूल करते रहे, जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे। जो धूल जो होती है ना, प्रॉब्लम समस्या होती है हमारे, धूल चेहरे पर होती है, हम समझते हैं आईने पर धूल है, आईना को साफ करते रहेंगे तो क्या होगा, जैसा चेहरा होगा वैसा ही दिखाई देगा। ऐसे ही जिंदगी भर जो है ना हम दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। हमारे यहाँ बहुत आदि माताएं बैठे हुए हैं, बहने, आप सबको याद होगा बचपन से ही ना क्या होता है, हमारे अंदर यही संस्कार डाल दिए जाते हैं हम बच्चों में, ये संस्कार कैसे, बच्चा होता है छोटा होता है बड़ा प्यारा लगता है, सब उसको गोदी में लेके खिलाते हैं, धीरे धीरे वो चलना शुरू करता है, खड़ा होना, माँ बाप भी खुश होते हैं, देखने वाले सब और बहुत खुश, वो चलना शुरू करता है बस और खुशी होती है। अब चलते चलते गिर जाता है, फिर उठकर खड़ा होता है, फिर चलता है, इस तरह धीरे धीरे उसका अभ्यास होने लगता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब चलना शुरू करता है बड़ी तेजी से चलता है, गिर जाता है। और जब गिर जाता है तो क्या होता है, भाई बच्चा तो कोमल है, थोड़ा रोने लगता है, चोट लग जाती है उसे थोड़ा तो रोने लगता है। माँ क्या करती है फिर, आप सब अनुभवी बैठे हो, क्या करते हो अगर छोटा बच्चा ऐसा गिर जाता है, रोने लगता है, तो आप क्या करते हैं? अक्सर घरों में देखा है बच्चे को उठा के, हाँ, जहां धरती पर गिरा है उस धरती को मारते हैं ऐसा करके, कि जैसे बच्चे का दोष नहीं है, ये धरती का दोष है, वहां गिर गया, और ऐसा ही बोलते हैं। और फिर बस बच्चा भी बड़ा गौर से सुनता है, वो भी चुप हो जाता है। लेकिन बचपन से ही उसके अंदर हमने ये संस्कार डाल दिया कि कोई भी बात होती है तो तेरा दोष नहीं है, दूसरे का दोष है। और तो बचपन से ही वो संस्कार हमारा पक्का होता चला जाता है, कोई भी बात होती है कि दूसरे ने गलती करी, इस कारण से ऐसा हुआ। लेकिन आवश्यकता इस बात की है हम अपने को भी देखें और तब उसके बाद आगे जीवन पर निर्णय करें। और मन को कहा गया है ना, मन बड़ा चंचल है, घोड़ा है, ये सब मन की इच्छाएं हैं। इतने घोड़े दिखाए हैं ना, तो मन ना, बताया ना, चारों तरफ मन भागता रहता है, काल्पनिक चीजों में और ज्यादा भागता है। मन रूपी घोड़ा, संसार को भव सागर कहा गया है, और इस संसार के भव सागर में हम सब मन रूपी घोड़े को दौड़ाए चले जा रहे हैं। कई बार कई बातें ऐसी होती हैं कि एक्चुअल नहीं होती, काल्पनिक होती हैं, लेकिन हम उसमें बड़े परेशान हो जाते हैं। मानो अभी आप यहां बैठे हो, बड़ा अच्छा लेक्चर एंजॉय कर रहे हो, आपके मोबाइल पर मैसेज आता है कोई कि फलाना आपका निकट का संबंधी है, मित्र है, बहुत क्लोज है, उसका एक्सीडेंट हो गया, बहुत सीरियस है। बस आप बैठे तो यहां हो, लेकिन मन आपका वहां पहुंच जाएगा। बार बार मन सोचेगा क्या होगा, कैसे होगा, कैसा उसका एक्सीडेंट हुआ, कितना सीरियस है, बच्चे छोटे हैं उनका क्या होगा, और कई प्रकार की मन कल्पनाएं कर लेते हैं, कर लेता है, मन भाग जाता है। इसीलिए वो मन को कैसे हम वश में करें, उसके लिए ये बताया गया। मन ये जो विचार शक्ति का नाम है ना, लेकिन ये बहुत बड़ी शक्ति है। और ये मन जो है, आई यानी कि थॉट्स, मैं, संसार में कई जगह प्रयोग किया गया और देखा गया, हम सारे दिन भर में दो शब्द सबसे ज्यादा यूज करते हैं। कौन से दो शब्द हैं? मैं और मेरा। ठीक, बहुत अच्छा। ये शब्द जो यूज करते हैं, और इस कारण से ही मैं और मेरा, अब कैसे हम इसके द्वारा अपने विचारों को कंट्रोल करें, क्योंकि ये ही नेगेटिव विचार भी लाते हैं, और ये ही शब्द को अगर सकारात्मक दिशा में यूज करें तो ये सकारात्मक हो जाते हैं। तो मन के अंदर कई प्रकार के, मन का क्या काम है, मन का एक काम है थिंक, सोचना, विचार करता है। ये तो आपने सुना, सुबह भी सुना होगा। मन का दूसरा काम है महसूस करना। कोई हमारे ईगो को, हमारे अहम को ठेस पहुंचाता है, तुरंत ही हमें महसूस होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुख का हो या सुख की महसूसता हो, वो मन ही करता है। मन का तीसरा काम है इमेजिनेशन, कल्पना करना। कहा जाता है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। यानी कि मन के द्वारा कोई भी कल्पना की जा सकती है। बैठे आप यहां हैं, लेकिन जहां से आए हैं, मन अगर वहां पर कोई कार्य है, कोई भी बात है, मन वहां तुरंत चला जाता है, इमेजिनेशन। और चौथा कार्य है आइडियाज, विचार को निर्माण, उसको विचारों को बना करके उनको प्रैक्टिकल शेप में लाने का, फॉर्म आइडियाज। ये मन के चार कार्य हैं। और मन इन बातों में ना होता रहता है, क्यों, विचार कैसे करता है मन, ब्रेन है मनुष्य का, जो ये मस्तिष्क है इसके अंदर बहुत सारे ये न्यूरॉन्स होते हैं और मन जो है उनके द्वारा विचार शक्ति अपना पैदा करता है। कार्य मन का है लेकिन एक्शन जो है इन न्यूरॉन्स के द्वारा पूरे शरीर के अंदर नर्व्स फैली हुई हैं और वो नर्व पूरे शरीर में सब तरफ जाती हैं और उनके द्वारा उसको ट्रांसमिट किया जाता है, विचारों को भेजा जाता है। तो ये आप देख रहे हैं तो कितने प्रकार के विचार आते हैं मन में। आज जब हम पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं तो मन के अंदर जो विचार आते हैं, मन का एक विचार है पॉजिटिव थॉट्स। तो कौन से हैं पॉजिटिव थॉट्स? पॉजिटिव थॉट्स मन के अंदर अनेक विचार आते हैं पॉजिटिव थॉट्स। तो आज आपने सुबह सुना होगा ना, कौन से थॉट्स पॉजिटिव होते हैं, मन के कितने गुण हैं जो अभी बताया ना, शक्तियां, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान और शक्ति, ये जो हैं ये आत्मा के गुण हैं। तो जो भी हमारे विचार इनके साथ कनेक्टेड होते हैं वो है पॉजिटिव थॉट्स, सुख के देने के, शांति के, आनंद के, वो सब है पॉजिटिव थॉट्स। और दूसरे प्रकार के विचार हैं निगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार जो इसके विपरीत हैं, सुख के बजाय दुख के विचार आए, शांति के बजाय अशांति वातावरण में फैलाने के विचार आए, प्रेम की बजाय घृणा के, इस प्रकार से जो पॉजिटिव हैं उनके विपरीत जो विचार आते हैं वो हैं निगेटिव। तीसरे प्रकार के विचार हैं वेस्ट थॉट्स। कौन से हैं वेस्ट थॉट्स? अक्सर करके क्या होता है, कई बार हम पुराने ओल्ड थॉट्स में चले जाते हैं, पास्ट के थॉट्स में, भूतकाल के विचारों में चले जाते हैं, बस यही सबकी जड़ होती है वेस्ट। उस पर हमारा कंट्रोल तो नहीं होता, लेकिन बात हो गई, पुरानी हो गई, लेकिन मन चलता रहेगा, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता तो अच्छा था, ये क्यों किया, अगर इसकी बजाय ये कर लेता था तो रिजल्ट दूसरा हो जाता, उस पर कंट्रोल नहीं है, इवेंट हो गया, लेकिन वेस्ट थॉट्स होता रहता है, पास्ट के विचार। और चौथे हैं एक आवश्यक विचार, जो घर गृहस्थी के, नौकरी धंधा के आवश्यक विचार हैं। तो इस प्रकार के ये चार विचारों में ही हमारा मन घूमता रहता है। वो दो ये विचार हैं बहुत पुराने, कबीरदास जी ने एक खास बोला है, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। आप सबको मालूम है ना, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। और दो पाट कौन से हैं? पुराने जमाने में चक्की होती थी ना, तो एक चक्की दो पाट होते थे, बीच में छेद होता था, उसमें अनाज डालते थे, पिस करके निकल जाता था। तो वो दो पार्ट कौन से हैं जीवन के? एक है भूतकाल, एक है भविष्यकाल। तो मनुष्य या तो भूतकाल के विचार करता रहेगा, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था आदि आदि, या फिर भविष्य के विचार, भाई अभी बच्ची की शादी करनी बाकी है, मकान बनाना बाकी है, अभी ये रिटायरमेंट आ रहा है, वो विचार प्लानिंग करना ठीक है, लेकिन उन विचारों में ही भूतकाल और भविष्यकाल के विचारों में मनुष्य पिस जाता है। तो दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, और खूंट पकड़कर जो रहा उसे पीस सका ना कोई। चक्की होती है ना, दो पाट होते हैं तो बीच में अनाज साबुत रह जाता है। तो ये भूतकाल, एक भविष्यकाल, और जो बीच में है वो है वर्तमान काल, प्रेजेंट। इसीलिए उसे प्रेजेंट कहा गया है, प्रेजेंट माने गिफ्ट। तो इसे जब भी हम मैरिज पार्टी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं, गिफ्ट ले जाते हैं, वैसा ही वहां का वातावरण होता है। तो हमारा जीवन भी एक गिफ्ट है। तो अगर हम जीवन में सदा खुश रहना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं, तो सदा प्रेजेंट के विचार करें, वर्तमान के विचार करें, भूतकाल के विचारों से उनसे शिक्षा ले, अनुभव प्राप्त करें, भविष्य की प्लानिंग करें, लेकिन भविष्य के विचारों में ही खो ना जाएं प्लानिंग, लेकिन रहें वर्तमान में। वर्तमान इज प्रेजेंट गिफ्ट, इसीलिए अगर वर्तमान में हम जीना सीख जाएंगे तो क्या होगा, हमारे जीवन में ज्यादातर करके पॉजिटिव थॉट ही रहेंगे, सकारात्मक चिंतन रहेंगे, जीवन में निगेटिविटी नहीं आएगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए आवश्यकता है जीवन में सकारात्मक, प्रेजेंट में जीने की, वर्तमान में जीने की। अभी आप वर्तमान में हैं या प्रेजेंट में के अलावा पास्ट या फ्यूचर में है, किसमें हैं अभी आप? सब यहाँ बैठे हैं, शरीर तो भले यहाँ है वर्तमान में प्रेजेंट, हो सकता है कोई कोई पास्ट में पहुंच गए हों, भाई मैं अमृतसर से आया हूँ, चंडीगढ़ से आया हूँ, वहां से वहां का मन वहां पहुंच गया हो, या फ्यूचर का कोई प्लानिंग, दो दिन बाद जाना है, रिजर्वेशन कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो पास्ट या फ्यूचर के, जब आप लाइफ को अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में रहिए। और वर्तमान में अगर आज हमारा वर्तमान अच्छा है, कल ये ही पास्ट हो जाएगा, टुडे इट इज प्रेजेंट, टुमारो इट विल बी पास्ट। तो कल अगर आज प्रेजेंट अच्छा हो गया तो कल यही पास्ट है, पास्ट हमारा अच्छा हो जाएगा, और जिसका पास्ट और प्रेजेंट अच्छा है उसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए प्रेजेंट में रहना सीखें, वर्तमान में रहना सीखें। कैसे पता चलेगा वर्तमान में कौन से थॉट्स हमारे प्रेजेंट के हैं, कौन से फ्यूचर के हैं? हमारे विचारों की गति से, एक तो मैंने बताया आपको संख्या, द विचारों की संख्या से टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ थॉट, और दूसरा है स्पीड ऑफ थॉट्स, उनसे पता चलेगा हमारा मन किस दिशा में भाग रहा है। तो द स्पीड ऑफ थॉट, इनसे पता चलेगा जब हमारे विचार बहुत, मैं आपको उदाहरण दे रहा था ना, बैठे हैं, मैसेज आया मोबाइल पर, फलाना एक्सीडेंट हो गया, आपका बहुत नियर एंड डियर है, बस मन बड़ी तेजी से भागने लगेगा, स्पीड ऑफ थॉट्स इमीडिएटली इट विल इंक्रीज, बहुत तेज हो जाएगी। तो वो एकदम जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए नेगेटिव, ऐसे ही वेस्ट थॉट भी ना काफी फास्ट होते हैं, ऑर्डिनरी थॉट्स जो होते हैं, सामान्य विचार बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होते, स्लो होते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव विचार होते हैं ना वो बहुत कम उनकी स्पीड होती है, स्टिल होते हैं। जैसे आपको अभी योग कराया जाएगा और योग में जब कमेंट्री दी जाएगी, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शांति स्वरूप, तो उस वक्त आपके विचार बहुत कम हो जाते हैं, और जितने कम विचार होंगे उतने शक्तिशाली विचार होंगे। तो इसीलिए अपने मन को देख सकते हैं तीन बातों से, एक है क्वांटिटी ऑफ थॉट्स, विचारों की संख्या कितनी है। आपको बताया गया हर दो सेकंड में एक विचार आता है, रफली 30 थॉट्स पर मिनट, इट बिकम्स रफली ये हो जाता है लगभग 25-30 हजार विचार एक दिन में, पता नहीं चलता लेकिन इतने विचार आ जाते हैं, ऑर्डिनरी वी कैन हैंडल। लेकिन जब कभी ये क्वांटिटी ऑफ थॉट्स बहुत बढ़ जाती है, 25-30 से बढ़ के 40-50-60-70 भी हो जाती है, कोई ऐसा चैलेंजिंग सिचुएशन लाइफ में आई बहुत ज्यादा, तो क्या होता है, स्ट्रेस हो जाता है। इसलिए क्वांटिटी ऑफ थॉट को कंट्रोल करने का साधन है, दूसरा साधन है क्वालिटी ऑफ थॉट्स, विचारों की गुणवत्ता को बढ़ाए। जितना क्वांटिटी ऑफ थॉट बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्वालिटी ऑफ थॉट कम हो जाएगी, इसलिए क्वालिटी ऑफ थॉट को बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी ऑफ थॉट अपने आप कम हो जाएगी, विचारों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। और इसी का नाम है योग, मेडिटेशन। मेडिटेशन में आपको ये सिखाया जाता है कि कैसे हम क्वालिटी ऑफ थॉट्स को बढ़ाएं। कमेंट्री दी जाएगी तो क्वालिटी ऑफ थॉट को बढ़ाइए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इस आत्मा ये शरीर इससे अलग है, न्यारी है, चैतन्य है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। धीरे धीरे कमेंट्री और उस कमेंट्री में ही की तरह हमारे विचार होंगे तो ये क्वालिटी ऑफ थॉट्स इंप्रूव हो रही है, और जितनी क्वालिटी ऑफ थॉट्स इंप्रूव होगी क्वांटिटी ऑफ थॉट कम होती जाएगी। और ये ही विदाउट मेडिकेशन, बिना दवाई लिए, कभी स्ट्रेस होता है दवाई ज्यादा ले लेते हैं, सिर दर्द हुआ, नहीं, उसके साइड इफेक्ट होते हैं। एक है मेडिकेशन, एक है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन से आप क्वालिटी ऑफ थॉट बढ़ाएंगे, क्वांटिटी ऑफ थॉट कम होगी, स्ट्रेस अपने आप रिलीव होता जाएगा बिल्कुल। और उस वक्त इसके साधन है, आप ब्लड प्रेशर मेजर कर लीजिए, आप देख लीजिए एकदम ब्लड प्रेशर जो हाई है। यहाँ तो हजारों एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि जब ऐसी सिचुएशन हो, बहुत मन भाग रहा हो, ब्लड प्रेशर आपका हाई है, मानो हो गया 150/160/100, और आप ऐसे विचारों को कम करते रहिए, विचारों की क्वालिटी बढ़ाते रहिए अपने आप ही, और 20-25 मिनट में देखा गया है वही बीपी लगभग नियर नॉर्मल 120/30/80 के करीब आ जाता है। कई बार यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, हमने खुद ये एक्सपेरिमेंट्स अपने ऊपर और दूसरों पर करे हैं। तो एक ये है, और तीसरी है डायरेक्शन ऑफ थॉट्स, क्वांटिटी ऑफ थॉट्स, क्वालिटी ऑफ थॉट यानी विचारों की संख्या, विचारों की गुणवत्ता और विचारों की डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हमारे विचार जा रहे हैं। अगर विचार चारों तरफ जाते हैं, विचार कमजोर हो जाते हैं। बचपन में हम सबने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, आपको याद होगा कि सूरज के सामने ना एक लेंस रख देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होता है, वो रख दो तो क्या होगा, उसकी किरणें धीरे धीरे कंडेंस यहाँ एक तरफ कन्वर्ज होने लगती हैं, एक तरफ आने लगती हैं, तो नीचे कागज रखो या कुछ, वो जल जाता है। अब वही सूर्य है, वही रोशनी है, लेकिन जब उसकी किरणों को एक तरफ कर दिया जाता है, कंसंट्रेट कर दिया जाता है, वही कितनी शक्तिशाली हो जाती है। ऐसे हमारे विचार वही हैं, हम वही हैं, वही शरीर है, वही धंधा है, वही संबंध है, सब कुछ वो है, लेकिन जब योग के द्वारा हम अपने विचारों को कन्वर्ज कर लेते हैं, एक ही जगह पर केंद्रित कर लेते हैं, तो सक्सेस इज ए मस्ट, सफलता जीवन का एक अंग बन जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ये मेडिटेशन बताया गया है, यही योगी की स्थिति बताई गई है कि मान अपमान, निंदा स्तुति, दुख सुख, हानि लाभ, इन सब में योगी की स्थिति समान रहती है। बड़ा अच्छा किसी ने इस स्थिति के बारे में कहा है, यही बात को गीतकार ने दो लाइनों में कहा है कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। जीवन जीतने पर तो सभी खुश होते हैं, लेकिन हमारी मानसिक स्थिति जीवन में ऐसी हो जाए, दुख सुख मान अपमान निंदा हर चीज में समान, यही जीवन है, यही योग आपको उस डायरेक्शन में ले जाएगा। तो ये बात हो रही थी उस योग की स्थिति को हम कैसे जाने। देखिए, कोई भी, ये हमारी आंख देखती है, कोई भी इवेंट अच्छा या बुरा नहीं होता है, कि बल्कि इस पर निर्भर करता है हम किस दृष्टिकोण से उस इवेंट को देखते हैं, कैसे इवेंट को। हाँ, अच्छा या बुरा नहीं, एक चीज एक के लिए अच्छी है, दूसरे के लिए वही बुरी है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है उस पर यह निर्भर करता है। और जैसे कि होता है, जब रात होती है तभी हम तारों को देख सकते हैं, अभी दिन में है, तारे अस्तित्व में हैं, लेकिन वो तारे हमें दिखाई नहीं देते, क्यों, क्योंकि सूरज की रोशनी है, इसने उस रोशनी में तारों की अपनी रोशनी छिप जाती है, दिखाई नहीं देती, लेकिन जब अंधेरा होता है, सूर्य छिप जाता है, तो वो तारों की रोशनी हमें दिखाई देती है। इसी प्रकार से जब कभी लाइफ में निगेटिव सिचुएशन आए, ऐसी परिस्थिति आए ना, तब हमारी अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज कितने हैं, शक्ति कितनी है, गुण कितने हैं, तो ही हमारी परीक्षा होती है। तो कभी भी हम एग्जाम में कोई पेपर, जीवन में समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, घबराए नहीं, वो हमारी इंटरनल पॉजिटिव थॉट्स को, एनर्जी को निकालने के लिए आई है। उससे हमें पता चलता है हमारे असली मित्र कौन है, दुश्मन कौन है, हमारा साथी कौन है, और किस प्रकार से हमें दूसरों से सहयोग मिलता है। इसलिए जीवन के अंदर ये देखना जरूरी है, कभी भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आगे बढ़ते हुए हमें यही समझना चाहिए कि ये हमें एक पॉजिटिव दिशा की ओर ले जा रहा है, और ये डिपेंड करता है हमारे दृष्टिकोण पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मानो मैं आपके घर में आया, प्यास लग रही है मुझे, मैंने पानी मांगा, आपने मुझे पानी दिया, अब आधा गिलास भरा है, बड़ी सिंपल बात है, तो अब मैं उसे दो दृष्टिकोण से देख सकता हूं। अरे, इन्होंने आधा ही गिलास दिया, आधा खाली है, इससे मेरी प्यास कैसे बुझेगी? मैं आधा खाली हिस्सा जीवन का देखूंगा तो निगेटिव बहुत संकल्प चलेंगे, ये तो ऐसे ही है, कंजूस है, पानी नहीं दिया, प्यास मेरी कैसे बुझेगी। और उसी चीज को ही अगर मैं एक दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूं, हाफ फुल, भरा हुआ हिस्सा, ओहो, इससे मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा, तो बस वो जीवन का एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, सकारात्मक दृष्टिकोण है, और उस सकारात्मक दृष्टिकोण से हम जीवन में हमेशा सफलता हासिल कर सकते हैं। मुझे एक प्रोफेसर की बात याद आ रही है, आप सब लोगों ने भी सुना होगा, एक प्रोफेसर लेक्चर कर रहे थे स्टूडेंट्स के सामने, और ये बता रहे थे कि भाई शराब पीने से क्या नुकसान होते हैं। तो उन्होंने दो गिलास लिए, एक गिलास में पानी लिया, एक गिलास में अल्कोहल ली। पहले पानी का गिलास लिया उन्होंने, और पानी का गिलास में उन्होंने देखा, कांच का गिलास था, एक छोटा सा कीड़ा पकड़ा उन्होंने, पानी में डाल दिया, कांच का गिलास था, सबने देखा कीड़ा पानी में चलता रहा, तैरता रहा, उसे कुछ नहीं हुआ, उसे निकाल करके उन्होंने टेबल पर रख दिया और वो कीड़ा चलता रहा, इट वॉज फाइन, हेल एंड हेल्दी। फिर उन्होंने दूसरा गिलास लिया जिसके अंदर अल्कोहल थी, शराब थी, और उसको कीड़े को शराब में डाल दिया, अब सबने देखा कांच का गिलास था कि कीड़ा अंदर गया और थोड़ी देर में जरा झूमने लगा, आफ्टर ऑल शराब थी, बड़े बड़े लोग झूम जाते हैं, ये तो बेचारा छोटा सा कीड़ा था, दो चार बूंद उसके भी शरीर में चली गई होगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो बिल्कुल उसकी गति समाप्त हो गई, कीड़ा जो है ना बस निर्जीव हो गया, प्रोफेसर ने हिलाया, उसके अंदर कोई प्राण नहीं थे, मर गया, और केवल मरा ही नहीं, थोड़ी देर में उसका शरीर घुलने लगा शराब के अंदर, और उसका रंग भी शराब का बदलने लगा, इतना शराब का तेज इफेक्ट। तो प्रोफेसर साहब ने पूछा, भाई सबने देखा स्टूडेंट से, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? स्टूडेंट ने सोचने लगा, एक स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया पीछे से, हाँ बताओ सर, वेरी सिंपल, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम शराब पियेंगे तो हमारे शरीर के सब कीड़े वीड़े मर जाएंगे और हम हेल्दी रहेंगे। ये सोचने का डर रहा है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होगा, हमें हर चीज अच्छी दिखेगी, सकारात्मक दिखेगी। और हमारा दृष्टिकोण ही नेगेटिव है, दूसरों में से कमियां देखने का, नेगेटिविटी का, घृणा हमारे अंदर भरी है, ईर्ष्या भरी है, तो जैसी हमारी दृष्टि होगी हमें वैसा ही संसार नजर आएगा। इसलिए हम अगर अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव बना लें, तो क्या होगा, संसार भी हमें धीरे धीरे सुखद और सब हमारे जैसे मित्र नजर आने लगेंगे। तो इसीलिए ये पॉजिटिव दृष्टिकोण जीवन के अंदर बहुत आवश्यक है। और ये कैसे आएगा पॉजिटिव दृष्टिकोण, क्योंकि जैसे अंदर विचारधारा होगी वैसी हमारी वाणी होगी। और इसीलिए यहाँ पर भी आपको एक स्लोगन मिलेगा, कल भी बहन जी बता रहे थे, वो स्लोगन आप लेकर के जाना। क्या है वो, कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो सोच कर बोलो, ऐसा एक छोटा सा स्लोगन सब जगह, क्योंकि हमारी एनर्जी सारे दिन भर में ना बोलने में बहुत खर्च हो जाती है। काफी बातें हम यूजलेस करते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी का निंदा है आदि आदि, तो उसमें उससे हमारी सोचने की शक्ति पर बहुत बड़ा असर पड़ता है और सोचने की शक्ति भी हमारी कमजोर होने लगती है। तो ये अगर कहीं पर भी मकान में चोट लगा देंगे देखेंगे तो जब भी बोलने का आएगा तो उस समय। इसीलिए कहा गया है कि साइलेंस इज गोल्ड स्पीच इज सिल्वर। मछली कांटे में क्यों फंसती है, मछली पकड़ी होगी ना, जैसे ही मछली बस देखती है कोई उसका शिकार कांटे में लगा है खाना उसका, उसे खाने के लिए मुंह खोलती है फंस जाती है। ऐसे हम लोग भी जब बोलने के लिए मुंह खोलते हैं, मुंह तो खोलना पड़े ना, मुंह खोलते हैं तो बस बोलने के जाल में फंस जाते हैं, एक के बाद दूसरी बात तीसरी बार चौथी बात निकलती चली जाती है और उसके अंदर एनर्जी खत्म होती चली जाती है। ये टंग है, किसी ने बड़ा अच्छा कहा है इस जवान के लिए, भगवान ने जब मनुष्य सृष्टि रची ना, सब पशु पक्षी जीव जंतु बनाए, लास्ट में मनुष्य को बनाया, तो भगवान ने सोचा ये मनुष्य मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है, लीडर है सबका, कैसे बनाऊं कि ये सबके साथ प्रेम से रहे। तो भगवान ने बहुत सोचा और सोचा भाई ये बोलने पर इसके बहुत कुछ निर्भर है, तो उन्होंने जीभ बनाई ना, जीभ बड़ी फ्लेक्सिबल बनाई, देखो जीभ में हड्डी नहीं है। तो उसी के ऊपर किसी ने कहा है कि फितरत को नहीं थी मंजूर सख्ती इंसान में, फितरत को नहीं थी मंजूर सख्ती इंसान में, इसलिए खुदा ने नहीं बनाई हड्डी जवान में। भगवान ने हड्डी नहीं बनाई लेकिन मनुष्य तो बड़ा क्रिएटिव है, उसने कहा कोई बात नहीं भगवान जी आपने नहीं बनाई, मैं बिना हड्डी के ही अपना काम निकाल लूंगा। और हम जानते हैं क्या अक्सर करके कह देते हैं, टंग माई टंग स्लिप्ड, मैं चाहता नहीं था ये बोलना लेकिन मेरे मुंह से ये शब्द निकल गए। बस कई बार जब ऐसी बातें बोल देते हैं, हम चाहते नहीं शब्द बोलना, कहते हैं मुंह से ये शब्द निकल गए, तो टंग स्लिप, टंग क्यों स्लिप करती है जवान, जवान क्यों स्लिप करती है, घर में भी फिसलने का स्कोप कहाँ होता है ज्यादा, बाथरूम में गीली जगह होती है वहां फिसल जाते हैं, ऐसी टंग बिचारी सूखी जगह में या गीली जगह में है, मुंह गीला है फिसल जाती है कह देते हैं, लेकिन अक्सर होता क्या है, मन पहले फिसलता है। मन जहां जवान मुंह से शब्द तो बाद में निकलते हैं, पहले मन के अंदर वो शब्द आते हैं। किसी के ऊपर आपको क्रोध करना है जवान से तो बाद में करेंगे, पहले मन के अंदर बॉइल हो जाएंगे, ये बोलना है ऐसा करना है। मन में प्रेम के शब्द होते हैं, जवान में भी फिर वैसे प्रेम के शब्द निकलते हैं। तो हर बात में कल्प्रिट जो है मन है, कल्प्रिट कहे या कोई भी अच्छे या बुरे काम का सोर्स जो है, न्यूक्लियस जो है वो है मन। तो मन को अगर हम नियंत्रण में कर लेते हैं, इसीलिए आज का जो टॉपिक है आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, तो ये इसी के लिए है कि पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो पॉजिटिव स्पीच भी होगी और इस प्रकार से पॉजिटिव सब बातें होंगी। बोलने पर कंट्रोल, एक है कि हस्बैंड वाइफ में थोड़ा सा तकरार हो रही थी परिवार के अंदर, वाइफ को गुस्सा आ रहा था, वो बोलती जा रही थी, हस्बैंड बेचारा चुप बैठा हुआ था, कुछ बोल नहीं रहा था, तो वाइफ का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। तो उसने देखा इधर उधर गुस्से में ख्याल तो रहता नहीं, मोबाइल पास में पड़ा हुआ था, मोबाइल उसने उठाया और ऐसा फेंक करके मारा हस्बैंड की तरफ। तो हस्बैंड जरा अलर्ट था, एक्टिव, उसने फट से मोबाइल कैच कर लिया, गिरने नहीं दिया। फिर और गुस्सा आया वाइफ को कि भाई मैं इतनी देर से बोल रही हूं, ये जवाब मांग रही हूं, तुम जवाब नहीं दे रहे हो, बोलो। ऐसा उसने बोला। तो फिर हस्बैंड ने बोला, मोबाइल तो कैच कर लिया था, इनकमिंग फ्री मोबाइल था ना, तो इसलिए इनकमिंग फ्री। बात क्या है, इस बात का भाव कि सिचुएशन घर में क्वाइट पॉसिबल कभी ऐसी आ सकती है तकरार की, लेकिन अगर एक व्यक्ति दोनों में अपना कूल बनाए रखता है, शांति बनाए रखता है, तो बस उस वातावरण को भी हम शांत और शीतल कर सकते हैं। अगर तो दिस इज आर्ट ऑफ मैनेजिंग द माइंड, माइंड को कैसे वो करें, मैनेज करें। तो ये एक वो है। जीवन के अंदर समस्याएं तो बहुत आती हैं, पतंग तो सबने उड़ाई होगी जीवन में हा? तो जब पतंग उड़ाते हैं, पतंग कब ऊपर जाती है, तेज हवा होती है, पतंग उड़ाने में भी आनंद आता है, ऊपर जाती है। तो जितनी तेज हवा होगी जीवन के अंदर भी, अगर बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हमारा जीवन रूपी पतंग बहुत इधर उधर हो रही है, तो हम घबराए नहीं। क्यों, उस वक्त क्या समझे, तूफान को तोहफा समझो। जीवन के अंदर तूफान आते हैं, प्रॉब्लम समस्याएं आती हैं, तो वो मुझे कुछ सिखाने के लिए आए, तोहफा है ईश्वर की तरफ से। और वो तोहफा जो है, अगर मेरी थिंकिंग ऐसी होगी तो यू विल रियली फाइंड, आपको पता चलेगा कि वास्तव में वो समस्या आपको ये पॉजिटिव, ये इतना बड़ा लेसन जीवन में सिखा करके गई है। तो उस समस्या से आप स्ट्रेस में नहीं आएंगे, टेंशन में नहीं, बल्कि उससे जीवन में कुछ सीखेंगे ही सीखेंगे। और साथ ही साथ जीवन के अंदर ना, वाइल एंजॉइंग स्मॉल प्लेजर ऑलवेज थिंक बिग थॉट्स, हमारे विचारों को हम महान रखें। कैसे विचारों को महान रखेंगे, देखो ये आदमी चला तो रहा है साइकिल, लेकिन साइकिल चलाते चलाते भी ना अपना इज थिंकिंग ऑफ सम वेरी हाई मॉडल ऑफ कार, ओ वन डे आई विल परचेज दैट कार। थिंकिंग प्रेजेंटली साधारण है, लेकिन थिंकिंग है। यहां भी आप आए हो ना, तो यहां आपको बताया होगा भाई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में कौन सी शिक्षा दी जाती है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बने, टारगेट इतना हाई है। तो जितना हाई टारगेट होता है, उतना हाई हमारा और अचीवमेंट्स भी जीवन के अंदर होते जाते हैं। तो ऑलवेज कीप हाई थॉट्स, कहा जाता है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, लेकिन इसमें थॉट्स बहुत पावरफुल हों, क्योंकि हम सब जब से पैदा हुए हैं, हम सब के अंदर दो शक्तियां विशेष हैं। कौन सी दो शक्तियां, एक है पावर टू रिमेम्बर, एक है पावर टू फॉरगेट, एक है याद रखने की शक्ति, एक है भूलने की शक्ति। लेकिन विडंबना क्या है जीवन की, द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज कि हम जो बात याद रखना चाहते हैं वो तो जाते हैं भूल, और जो बात भूल जानी चाहिए वो बरसों तक याद रहती है। ये जीवन की एक विडंबना है। तो इसीलिए ये शक्तियों को कैसे यथार्थ यूज करें, कहां क्या भूलना है, कहां क्या याद रखना है, ये भी आर्ट ऑफ थिंकिंग में राजयोग के द्वारा मेडिटेशन में, जितना जितना आप मेडिटेशन सीखेंगे ना, तो ये बात याद आ जाएगी। टाइम पर आपको राइट चीज ऑटोमेटिकली टच होगी विद द मेडिटेशन, और उससे क्या होगा, जीवन में सफलता सदा हासिल करते जाएंगे। टेक टाइम टू थिंक, आजकल एवरीबॉडी इज हेल्थ कॉन्शियस, जो सब चाहते हैं स्वास्थ्य ठीक रहे, इसने जो प्राणायाम आसन आदि भी सिखाए जाते हैं, टीवी वगैरह पर भी आते हैं, और कहा जाता है हर एक सीखे, अच्छा भी है सब सीखना, लेकिन ये भी कहा जाता है कि भाई नकल के लिए भी क्या चाहिए, अकल चाहिए। अब ये मानो दिखाया जा रहा है शीर्षासन करना चाहिए, शीर्षासन से ये लाभ होते हैं, और घर में बैठ के आदमी देख रहा है कुर्सी पर बैठ के टीवी, और वो अगर रिवॉल्विंग चेयर पर ही वहीं शीर्षासन करने लगेगा तो क्या होगा? व्हील्ड चेयर है वो तो एक्सीडेंट हो जाएगा, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। तो इसका भाव यह है कि हम सीखें लेकिन प्रॉपर गाइड के अंडर में कोई भी सीखें। डोंट जस्ट रिएक्ट, एक्ट बट डोंट रिएक्ट, यानी कि इमिजिएटली अपनी प्रतिक्रिया ना करें। क्रिया होती है, होता क्या है, नुकसान किससे होता है? कोई व्यक्ति ने कुछ कहा लेकिन हमारी प्रतिक्रिया कैसी रही उस पर सारा डिपेंड रखता है, उसके कहने पर नहीं। अगर मैं काम कूल रहता हूं पॉजिटिव है, अगर इमिजिएटली बॉइल हो जाता हूं और 10 बात बोल के निगेटिविटी आ जाती है वो प्रतिक्रिया यथार्थ नहीं है। इसने आवश्यकता इस बात की है हमारा रिएक्शन वो जितना पॉजिटिव होगा हमारी थिंकिंग हमारा एक्शन वो सब भी पॉजिटिव होता रहेगा। जीवन में स्ट्रेस तो सबको आता है, टेंशन है, आजकल ओलंपिक भी हो रहे हैं और वैसे भी जब जब गेम होते हैं, जिनको क्रिकेट का वनडे का शौक है बहुत देखते हैं, 20-20 मैच है या 50 का मैच है। तो ऐसे ही एक ऑफिस में एक आदमी ने एक दिन छुट्टी ली कि आज भाई मैं मैच देखूंगा, घर में टीवी के सामने बैठ गया मैच देखने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग मैच इंडिया पाकिस्तान का चल रहा था, ओवर हुए 5 ओवर 10 ओवर 15, तो जब मैच शुरू हुआ देख रहा था, ही वॉज एंजॉइंग स्मोकिंग ऑल्सो एंड पैर फैला के टीवी देख रहा था आराम से। उसकी मिसिज आई, छोटा बच्चा गोदी में था, मुंह में बॉटल लगी हुई थी कि भाई चलो तुम मैच भी देख लो, इसको ये बॉटल से दूध भी पिलाते रहो। तो उसने कहा ठीक है, उसने बच्चे को गोदी में लिया, मुंह में बॉटल लगी हुई थी और दूध बच्चा पीता रहा, वो भी अपना मैच देखता रहा, स्मोकिंग करता रहा। थोड़ी देर के बाद बच्चा सो गया, तो बच्चे को उठा के उसने पास में बेड पर सुला दिया, मुंह से बोतल निकाल के एक तरफ रख दी और मैच देखना कंटिन्यू रखा। तो मैच बड़ी एक्साइटिंग स्टेज में पहुंच गया था और बस एक्साइटिंग स्टेज में पहुंच गया था, उसने भी सिगरेट निकाल के अलग रख दी और बस देख रहा था मैच। 15 ओवर हो गए, 20 ओवर का मैच है, लास्ट में 4-5 ओवर बचे, इतना स्कोर बनाना है। ईच एंड एवरी बॉल वॉज काउंटिंग। इतनी देर में बच्चा रोने लगा, तो थोड़ी देर तक तो उसने बच्चे को थपथपाया लेकिन बच्चा रोया नहीं, मतलब चुप नहीं हुआ। उसने फिर बच्चे को उठाया, अब ध्यान तो सारा पिक्चर उधर ही था टीवी में, तो जल्दी जल्दी में क्या किया, देखो बॉटल निकाल के उठा के तो अपने मुंह में लगा ली और सिगरेट बच्चे के मुंह में लगा दी। देख रहे ना, अक्सर करके स्ट्रेस में ऐसा ही होता है। ये तो एक उदाहरण जैसा बताया, जब भी लाइफ में स्ट्रेस हो, तनाव हो, टेंशन हो, क्रोध हो, उस समय जीवन का कोई मेजर डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर करके उस समय जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो ज्यादातर करके विध्वंसक होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं। हमारे भाई बहने रक्षाबंधन पर जेलों में जाते हैं और अक्सर देखते हैं, कैदियों से ही मिलते हैं, बहुत कई बहुत अच्छे मनुष्य होते हैं लेकिन जीवन में क्रोध के वश कोई ऐसा काम करा और जीवन भर की सजा हो गई। तो योर टेंस मोमेंट, जब भी तनाव में आप हो, टेंशन में हो, कोई ऐसा लाइफ का मेजर डिसीजन या कुछ ऐसा नहीं तो जैसे अभी आप हंस रहे हो ना, ऐसे हमें भी जब टेंस होता है दूसरे पड़ोसी पड़ोसी और बहुत हंसते हैं। तो अभी आप जब यहां आए हो, ओवरकमिंग हर्डल्स, जीवन में प्रॉब्लम हर्डल्स तो आएंगी, तो अभी उसके लिए क्या करिए, आप भले किसी में आए हो, बस में, ट्रेन में, कार में, लेकिन जाएं यहां से वापस किस में, बुद्धि के प्लेन में। बुद्धि के प्लेन, प्लेन होता है ऊपर से उड़ जाता है, नीचे फ्लड भी हो, नीचे ब्रिज टूटा हुआ हो, कोई भी बात हो उसका असर उसे प्लेन पर नहीं पड़ता, वो ऊपर ही ऊपर चला जाता है और डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। ऐसे यहां पर आप आए हो, आपको दो पंख मिले हैं ज्ञान और योग के, इन ज्ञान और योग के पंखों के आधार पर आप जाएंगे तो जीवन में कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको आप आसानी से पार कर लेंगे, प्रोवाइडेड आप जब यहां से जाएं ना तो अपने सिटी में, आपके शहर में जो भी ब्रह्मा कुमारी इसकी ब्रांच है, उस ब्रांच में जाकर के आप ये कंटिन्यू थोड़ा करेंगे मेडिटेशन को, तो आपको जीवन में और बहुत लाभ होगा। और टुवर्ड्स जीवन का एक अंग नींद करना है, तो रात को अगर नींद बढ़िया आ जाती है तो सारा दिन भर भी बहुत अच्छा रहता है। तो रात को नींद अच्छी आए उसके लिए क्या करें, ऐसे बुद्धि का ना अपना खोपड़ी का ढक्कन खोल दीजिए। खोल सकते हैं ढक्कन जो यहाँ दिखाया गया है, इसका भाव क्या है कि रात को सोने से पहले दिन भर के अगर कोई निगेटिव विचार हैं, वेस्टफुल थॉट हैं, बेकार हैं, क्रोध के, अहंकार के, निराशा के कोई भी विचार हैं, उन विचारों को यहीं पर ही जैसे डस्टबिन में डाल दीजिए। डस्टबिन माने बस सोने से पहले दो मिनट तीन मिनट योग करें और ये सोचें कि भाई मेरा शरीर यहाँ बिस्तर पर विश्राम कर रहा है और मैं आत्मा अब हे प्रभु आपकी गोदी में आके विश्राम कर रहे हैं। तो ये सब विचार यहाँ से अपने को डिटैच कर ले, और जितना थोड़ा सा डिटैचमेंट होगा उसके बाद क्वालिटी ऑफ स्लीप विल बी वंडरफुल। जब हम डिटैच नहीं कर पाते तो सारे दिन भर की घटनाएं याद आती रहेंगी, प्रॉब्लम। और जैसे ही हम डिटैच, आप बाहर गर्मी से आ रहे हैं एसी रूम में आए, बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है, क्यों? क्योंकि वो डिटैच्ड है। बाहर का एनवायरनमेंट, अंदर के एनवायरनमेंट ठंडे से डिटैच है, आपको कंफर्टेबल महसूस होता है। ऐसे जब हम बुद्धि को ना थोड़ी देर के लिए शरीर से इससे डिटैच कर लेते हैं और उसके बाद नींद करेंगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी, क्वालिटी ऑफ स्लीप, और उससे दिन में जब उठेंगे बड़े फ्रेश रहेंगे। और जब आप यहां से जाएं अभी, तो जाने से पहले क्या करिएगा, दो तीन दिन है आप पे, तो यहां से कुछ ऐसे अच्छे विचार ले जाइए। क्वाइट पॉसिबल अभी तो आपका बड़ा अच्छा मूड है, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर आपको एक से एक सुनने को मिलेंगे, लेकिन क्वाइट पॉसिबल कभी आपका वहां पर मूड ऑफ हो जाए, कई समस्याएं आती हैं परिवार के अंदर, फिर से ऐसा अच्छा मूड लाने के लिए आप यहां से ना कुछ ऑडियो कैसेट ले जाइएगा, कुछ वीडियो कैसेट। अभी आपका लेक्चर लेंगी शीलू बहन जी, परमात्मा एक से एक बढ़िया लेक्चर हैं उनके, तो वो सारे लेक्चर्स की प्री रिकॉर्डेड कैसेट्स हैं, सीडीज हैं राजयोग शिविर की, वो ले जाइएगा। तो उन सबसे क्या होगा कि जब भी आपका थोड़ा मूड ऐसा हो, टेंस हो, ऑफ हो, तो वहां पर लगा के सुनिएगा, अगेन यू विल कम बैक टू दिस मूड। एंड इन द एंड टुवर्ड्स यहां पर आप आए हैं तो यहां अपने कोई भी फ्रेजाइल लिंक को आइडेंटिफाई कीजिए। आप थोड़ा सा दो तीन मिनट एकांत में बैठ करके अपने अंदर देखिएगा और सोचिएगा, मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है या कमजोरी है जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस हो जाता है, मैं पीसफुल नहीं हूं। तो आपका अंतर मन ही गवाही देगा, किसी का मन कहेगा मुझ में क्रोध है, किसी का मन कहेगा कि मुझ में ईर्ष्या है, घृणा है, जो भी निगेटिविटी होगी, कमजोर संकल्प, आप उसको आइडेंटिफाई करिए। जैसे ये यहां पर चेन के अंदर ना देखिए वो एरो, दैट इज योर वीकेस्ट लिंक। तो हर एक के जीवन में कई पावरफुल चीजें होती हैं, कोई वीक लिंक होती है, तो उस वीक लिंक को आइडेंटिफाई करके और आप क्या करिएगा, जाने से पहले एक कागज में आप लिख के जाइएगा, हे प्रभु मैं यहां पर अपना इस कमी का दान देकर जा रहा, दान देकर जा रही हूं। और हमें ऐसा, यस, ये आपके लिए बहुत शक्तिशाली चीज है। हमें ऐसा अनुभव है, जो चेन स्मोकर थे, एक दिन में 20 पैकेट सिगरेट पिया करते थे, बहुत कोशिश करी उन्हें छोड़ने की, नहीं छोड़ सके, यहां पर आए सुन करके सच्चे दिल से उन्होंने लिखा। उसके लिए कुछ एक दो कंडीशन है कि किसी भी हालत में अपनी इस ओथ को ना आप 3 वीक्स तक ना डाइल्यूट ना होने दें, इस संकल्प को, किसी भी हालत में मुझे ये संकल्प को पूरा करना है। आप देखेंगे जीवन भर के लिए ना आप उस कमजोरी पर विजय पा लेंगे, फिर वो कमजोरी आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी। और उसके लिए दिस इज द लास्ट स्लाइड, इंस्पायरेशन लेके जाइए यहां से। गणेश जी कहा, गणपति बापा मौर्या बोलते हैं ना, विघ्न विनाशक, तो जीवन में आपके कभी भी विघ्न नहीं आएंगे। तो ये विघ्न विनाशक कैसे बनेंगे? गणेश जी का फॉलो करने से। कौन सा गणेश जी का? देखिए, बड़ा सिर जो है किस बात का प्रतीक है? बड़े विचारों का, महान विचारों का। तो आप ये संकल्प करके जाइए, मैं आज से जीवन में केवल महान विचार करूंगा, कमजोर घृणा नेगेटिविटी ईर्ष्या द्वेष के विचार नहीं। फिर गणेश जी का बड़ा कान जो है ना, वो इस बात का सूचक है, सुनने की कला। झगड़ा क्यों होता है? जब दोनों पार्टीज आपस में बोलती जाती हैं, एक बोल रहा है आप शांति से सुन लेंगे, आधा झगड़ा तो वहीं खत्म हो गया। तो इसलिए सुनने की कला ये और डेवलप करने की आशा है, उससे नए आइडियाज नए सजेशन आते हैं। नैरो आईज, छोटी आंखें कंसंट्रेटेड कंसंट्रेशन का प्रतीक है। यहां से योग और ध्यान सीख जाइएगा। चौथा, बड़ी नाक किस बात का प्रतीक है? इस बात का प्रतीक क्रिएटिविटी का। जैसे कुछ जानवर होते हैं, सूंघते जाएंगे देखते जाएंगे, जहां उनका शिकार मिला फट से डंक मार के खा लेते हैं, ऐसे ही हमारा ये जीवन का श्वास, नाक श्वास का प्रतीक है। तो हाथी की नाक होती है, पूरे पेड़ को पकड़ लेगा, मेन ट्रंक को उखेड़ देगा। ऐसे ही हम भी नाक के द्वारा बड़ी से बड़ी समस्याएं होंगी, अपनी क्रिएटिव बुद्धि के द्वारा वो हम उन बात को समझ सकेंगे राइटली और राइट डिसीजन ले सकेंगे। छोटा मुंह इस बात का प्रतीक है, कम बोलने का प्रतीक। और बड़ा पेट किस बात का प्रतीक है गणेश जी का? पावर ऑफ डाइजेशन, एडजस्टमेंट। तो जीवन में हम जितना एडजस्ट होके चलते रहेंगे, उतना जीवन में सफलता को प्राप्त करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप अपना वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आप सब सुखी और शांतमय होके जाएंगे। धन्यवाद। ओम शांति। आप सब बैठे रहिएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ के जो एस राजयोग का टीचर हैं, सब मुख्य राजयोग शिक्षिका शीलू बहन जी, वो आ चुके हैं। हम सब दो मिनट योग करते हैं और उसके साथ साथ आप सब लोग बैठे रहिएगा। अगर किसी को बहुत ही आवश्यक है तो एक दो मिनट तीन मिनट के लिए उठ के जा सकते हैं, फिर आ जाइएगा, क्योंकि ये लेक्चर कंटिन्यूटी में चलेंगे। इसके तुरंत बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर परमपिता परमात्मा के ऊपर, वो आपको सुनने को मिलेगा। धन्यवाद। ओम शांति।